धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज विहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Thank you. जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की श्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की अस्मद आचार्य पर्यंतम गुरु परंपरा की समागत वैष्णव मंडली की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम अज्ञान तीव्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते वांछा तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे समागत वैष्णव मंडली की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो आज जो है अष्टम स्कंध के 13वां अध्याय श्लोक संख्या 1 से लेके 11 तक असंख्येय कल्याण गुणगण निलय सृष्टि स्थिति लय हेतवः स्वेतर समस्त वस्तुषु विलक्षण स्वरूप श्री राधा श्याम सुंदर की छत्र छाया में आज हम मन्वंतर कथा का श्रवण करेंगे। तो समागत वैष्णव मंडलियों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहूंगा और पूज्यपाद धर्मात्मा प्रभु जी को मैं विशेष कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। तो आज हम प्रथम श्लोक एवं 11 श्लोक का सामूहिक पाठ करेंगे। श्री शुक उवाच मनुर्विवस्वतः पुत्रः श्राद्ध देव इति श्रुतः सप्तमो वर्तमानो यत् तदपत्यानि मे शृणु मनुर्विवस्वतः पुत्रः श्राद्ध देव इति श्रुतः सप्तमो वर्तमानो यत् तदपत्यानि मे शृणु मनुर्विवस्वतः पुत्रः श्राद्ध देव इति श्रुतः सप्तमो वर्तमानो यत् तदपत्यानि मे शृणु बोलि वाच विवस्वता पुत्रः श्राद्ध देव इति श्रुतः सप्तमो वर्तमानो यत् तदपत्यानि मे शृणु मनुर्विवस्वतः पुत्रः श्राद्ध देव इति श्रुतः सप्तमो वर्तमानो यत् तदपत्यानि मे शृणु श्रीशुक उवाच मनुर्विवस्वतः पुत्रः श्राद्ध देव इति श्रुतः सप्तमो वर्तमानो यत् तदपत्यानि मे शृणु श्रीशुक उवाच मनुर्विवस्वतः पुत्रः श्राद्ध देव इति श्रुतः सप्तमो वर्तमानो यत् तदपत्यानि मे शृणु श्रील प्रभुपाद कहते हैं श्री शुक उवाच श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा मनु विवस्वतः सूर्य देव का पुत्रः पुत्र श्राद्ध देवः श्राद्ध देव इति इस प्रकार श्रुतः ज्ञात विख्यात सप्तमः सातवां वर्तमानः इस समय यह जो तत् उसकी अपत्यानि संताने में मुझसे शृणु सुनो श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा वर्तमान मनु का नाम श्राद्धदेव है और वे सूर्यलोक के अधिष्ठाता देवता विवस्वान के पुत्र हैं। श्राद्धदेव सातवें मनु हैं। अब मैं उनके पुत्रों का वर्णन करता हूँ, कृपा करके मुझसे सुने। हाँ, अब एकादशवां श्लोक उद्घाटन कीजिए। 11th श्लोक। अष्टमेंतर आयाते इसी अध्याय के 11th श्लोक।
हो गया।
अष्टमेंतर आयाते सावर निर्भविता मनुहु निर्मोक विरजस्काद्याः सावरणी तनया नृप। अष्टमेंतर आयाते सावर निर्भविता मनुहु निर्मोक विरजस्काद्याः सावरणी तनया नृप। बोली अष्टमेंतर आयाते सावरणी भविता मनुः निर्मोका विरजस्काद्या सावरणी तनया नृपः। अष्टमेंतर आयाते सावरणी भविता मनुः निर्मोक विरजस्काद्या सावरणी तनया नृपः। ठीक। अष्टमे आठवें अंतरे मन्वंतर में आयाते आने पर सावरणी सावरणी भविता हो जाएगा मनुः आठवां मनु निर्मोक निर्मोक विरजस्क आद्याः विरजस्क इत्यादि सावरणी सावरणी के तनयाः पुत्र नृप। हे राजा हे राजन आठवें मनु की कालावधि आने पर सावरणी मनु बनेगा निर्मोक विरजस्क इत्यादि उसके पुत्र होंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पादौ यदीयौ प्रथमौ द्वितीयौ तृतीयतुर्यौ कथितौ यदूरु नाभिस्तथा पञ्चम एव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यो कण्ठस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्यम् एकादशो यस्य ललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतः स्वरूपम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यश्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तच्चरणश्रवणस्त्वगादिन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तो ये मन्वंतर की कथा है। एक चतुर्युग में चार युग होते हैं, सत्य त्रेता द्वापर और कलि। ऐसे 71 चतुर्युग मिलके एक मन्वंतर होता है और 71 चतुर्युगी से बने हुए एक मन्वंतर, ऐसे 14 मन्वंतर में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और एक रात्रि। तो हर एक मन्वंतर में, मन्वंतर यानी 71 चतुर्युग, ऐसे इंटू 14, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है तो ब्रह्मा जी शयन करने जाते हैं। इतना सृष्टि किया, अब उनको भी थकावट होती होगी तो शयन करते हैं। तब जो प्रलय होता है उसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं, और चार चतुर्युग हो गए, 71 चतुर्युगों का एक समूह इंटू 14, ये हो गए ब्रह्मा जी के एक दिन। ऐसे शतायु 100 वर्ष तक ऐसे अगर आप जोड़ेंगे तो पता नहीं कितने शंख अर्बुद करोड़ जो वर्ष हैं, जो गणितज्ञ हैं एमएससी में, जो मैथमेटिक्स में एमएससी किया है उनको पता होगा। तो इतने वर्ष के बाद जो प्रलय होता है उसको प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। दोनों दो प्रकार के प्रलय होते हैं। तो यहां पे मन्वंतर की कथा हो रही है और सातवां मन्वंतर वैवस्वत, विभास्वन का पुत्र है वैवस्वत। जैसे हम संकल्प करते हैं, कोई पवित्र अनुष्ठान आदि होता है तो हम संकल्प करते हैं कि अमुक देव शर्मण, शांडिल्य गोत्रोत्पन्नो हम तुलसीदास देव शर्मण, जम्बू दीपे भारतवर्षे वृंदावने श्री हरि प्रत्यर्थम भाद्रमासे शुक्ले पक्षे पंचम्यां तिथो वैवस्वते मन्वंतरे। ये वही मन्वंतर है। तो ये मन्वंतर की कथा कहने की क्या आवश्यकता है? मनु उनके पुत्र, अभी इसमें नाम ही नाम आएंगे, मैं श्लोक पढ़ता हूं। तो हर एक मन्वंतर में मनु बदल जाते हैं, इंद्र बदल जाते हैं, सप्तर्षि बदल जाते हैं और भगवान का एक अवतार होता है। जो पहला मन्वंतर है उसको स्वयंभू मन्वंतर कहते हैं। स्वयंभू मन्वंतर में ब्रह्मा जी के पुत्र सप्तर्षि, वो सप्तर्षि बने और भगवान अवतार लेते हैं। भगवान ने दो अवतार लिया स्वयंभू मनु में, कौन कौन से? कपिल और यज्ञ नारायण। तो इंद्र कौन बने? ना यज्ञ नारायण जो थे, एक दिन देवता कहीं जंगल में मृगया करने हो या कुछ अनुष्ठान के लिए जा रहे थे, यज्ञ होम आदि, तो राक्षसों ने धाबा बोल दिया, तो यज्ञ भगवान स्वयं आके उन राक्षसों का संहार करके देवताओं का उद्धार किया। तो देवताओं ने मिलके यही निश्चय किया कि आप ही हमारे इंद्र बनेंगे। तो यज्ञ नारायण अवतार भी लिए हैं और स्वयंभू मनु में वही इंद्र के रूप में विराजे हुए हैं। तो ऐसे मन्वंतर कथा कहने का ये तात्पर्य है कि ये इतिहास है। हम जैसे अपना गोत्र कहते हैं ना, शांडिल्य भरद्वाज वैशंपायन अत्रि वशिष्ठ अंगिरा, ये सब गोत्र है ना, ये क्या है? ये ऋषि ही तो हैं। तो हम उन ऋषि के वंश परंपरा में आए हैं। कोई कश्यप गोत्र है तो कश्यप ऋषि के वंशोद्भूत है। जैसे आप गया आदि में जो श्राद्ध करने कभी जाएंगे, वाराणसी में भी कुछ भाट ब्राह्मण मिलते हैं, तो जो श्राद्ध करने जाएंगे वो आप कहेंगे कि मेरा जो है पितृव्य का निधन हो गया तो मैं श्राद्ध करना चाहता हूं, तो उनके पास पोथी होती है, वो पोथी खोल के आपके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी आपको 6-7 पुरुष के नाम बता देंगे। तो ये परंपरा रही है और ये इतिहास होना चाहिए। तो इतिहास की आवश्यकता है प्रामाणिकता। जैसे हम कहते हैं ना, कह रहे हमारे दादाजी जो थे यहां के जमींदार थे, तो उसका श्रेय हम लेना चाहते हैं। तो जो शास्त्र का श्रेय, ये परंपरा से ही प्राप्त होती है। अस्मद आचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा, आज जो हमें मिला है ये अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी के कारण। तो उनके आगे पीछे जब हम जाएंगे तो क्रम से तार जुड़ता जाएगा। अब यही यहां पे मन्वंतर का विचार है। तो मन्वंतर को समझने के लिए द्वितीय स्कंध में इसकी व्यापक चर्चा हुई है, द्वितीय स्कंध एवं तृतीय स्कंध में। तो पुराण कितने हैं? 18 पुराण है, है ना, 18 पुराण है। उसमें से 6 क्या है? सात्विक, 6 राजसिक और 6 तामसिक। श्रीमद् भागवत क्या है? महापुराण। तो महापुराण, आप अगर किसी को, जैसे भोजन है और महाप्रसाद है, तो महाप्रसाद, उसी भोजन को आपने महाप्रसाद रूप से आख्यायित किया तो उसमें कुछ विशेषता आ गई ना। क्या विशेषता है? उसमें तुलसी डाल के नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पण किया गया है। तो पुराण शब्द के आगे महा ये युक्त होने से उनका अधिकार बढ़ जाता है, और अधिकार सामर्थ्य बढ़ने के कारण उनके लक्षण भी तो होंगे, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्राइटेरिया। तो इट शुड फुलफिल द क्राइटेरियंस। तो 10 लक्षण से समन्वित होता है महापुराण। वो 10 लक्षण कौन कौन से हैं? तो द्वितीय स्कंध के 10 अध्याय में जहां पे चतुश्लोकी भागवतम का वर्णन किया गया है, चतुश्लोकी भागवतम के बाद ही ये श्लोक आया है जिसमें कह रहे हैं अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये 10 लक्षण भागवत के 10 लक्षण हैं। अत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उतयः, उति कहते हैं, उतयः मन्वंतरे, मन्वंतर ये जो है, तो सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति और मन्वंतर, जो 10 लक्षण में से 6वां लक्षण है, उसी की चर्चा इस 8 स्कंध के 3 अध्याय में किया गया है। फिर ईशानु कथा, यह भी एक लक्षण है। निरोध ये लक्षण है, मुक्ति लक्षण है, और आश्रय। तो पूरी भागवत जो है, 10 स्कंध समन्वित भागवत, इसका पद्म पुराण में कहते हैं भागवत के लक्षण क्या है, भागवत को भगवान के इत्येषा वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, साक्षात भगवान की ही वांग्मय स्वरूप है, लिटररी फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। तो स्कंध से अगर हम देखेंगे तो पादौ यदियो प्रथमो द्वितीयो, प्रथम स्कंध और द्वितीय स्कंध क्या है? भगवान के चरण युगल हैं। तृतीय तूर्यो पादौ यदियो प्रथमो द्वितीयो तृतीय तूर्यो कथितो यदूरु, उरु यानी जंघा। तृतीय और चतुर्थ भगवान के जंघा हैं। नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो, नाभि कमल है भगवान के पंचम स्कंध, नाभिस तथा पंचम एव षष्ठो भुजांतरम दोर युगलम तथान्यो। छठवां स्कंध क्या है? भुजांतर, ये दोनों भुज है बाहु, उसके अंतर जो गैप इन बिटवीन मतलब वक्षस्थल है, षष्ठ स्कंध। भुजांतरम दोर युगलम तथान्यो, अन्यो दोर युगलम, बाहु का अंतर आपने बताया तो बाहु के बारे में नहीं बताया, तो कह रहे हैं अंतर जो युगल हैं, बाहु युगल हैं, वो सप्तम और अष्टम स्कंध है, हो गए आठ स्कंध। अब कंठस्तु राजन नवमो यदियो, हे राजन, नवम स्कंध है भगवान के कंठ। मुखारविंदम दशमः प्रफुल्यम, भगवान के मुख कमल हैं ये दशम स्कंध। एकादशो यश्च ललाट पट्टम, भगवान के ललाट हैं एकादश स्कंध। शिरोपितु द्वादश एव भाति, तो ये द्वादश स्कंध का विवेचन है। और लाक्षणिक अर्थ में क्या क्या है इनके दस लक्षण, ये वैष्णवों को जानना चाहिए। सर्ग, तो जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः, तो सर्ग यानी भूतादीनाम सृष्टि ही, जो प्राणियों की उत्पत्ति स्थल है। भगवान को वेदांत की भाषा में कहा जाता है सृष्टि स्थिति प्रलय हेतवः, सृष्टि स्थिति और प्रलय के हेतु। तो सर्ग का अर्थ होता है, दशम लक्षण का पहला लक्षण है सर्ग, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि। तो भगवान से, भगवान अंडाकार में शयन करते हैं, जब महाप्रलय होता है, प्राकृतिक प्रलय होता है, तो सब कुछ भगवान अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, उनके रोमकूप से अंडे की तरह जो है पूरे ब्रह्मांड को वो अपने में समाहित करके शयान करते हैं। फिर सृष्टि करना जब होता है तो वही बीज रूप में निकलते हैं और भगवान माया को इक्षण करते हैं और उसी से सृष्टि प्रारंभ होता है। तो सृष्टि का तात्पर्य ये नहीं समझना चाहिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि कोई ये ना समझे कि भगवान जो है सृष्टि करते हैं, सृष्टि करते नहीं है, सृष्टि करवाते हैं भगवान उनके इक्षण मात्र से। जैसे हम कहते हैं ना कि यहां पे जो है अमुक प्रभु का घर बन रहा है, तो क्या वो प्रभु जी जाके स्वयं घर बनाते हैं क्या है? तो वो बनवाते हैं, लेकिन करता तो वही है। तो उसी प्रकार से अगर भगवान को हम सृष्टि करता तो हैं, सृजन करता हैं, लेकिन वही सृजन करते हैं, ये जो कर्तृत्व का आरोप कर देना, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद मना कर रहे हैं। तो सर्ग यानी भगवान का सृष्टि करना, पूरे ब्रह्मांडों को, 14 भुवन आदियों का सृष्टि करना, पंच महाभूत क्षिति अपतेज मरुत व्योम, पंच तन्मात्राएं उनको ग्रहण करने के लिए इंद्रिय आदि, महत्त्व अहंकार मन बुद्धि चित्त, इन सब के द्वारा सृष्टि प्रारंभ होती है। तो ये करते कौन है? भगवान सर्वभूत गुहाशय, भगवान का नाम है सर्वभूत गुहाशय, सबके हृदय के अंतर्यामी रूप में विराजमान है। तो इसको कहते हैं सृष्टि, इसको कहते हैं सर्ग। अब विसर्ग क्या है? वी एक उपसर्ग है जिसको प्रीफिक्स कहते हैं हम। कोई क्रियापद होती है, जैसे ह्री धातु है हरण करते करने के अर्थ में, टू टेक अवे, टू स्टील, अब उसके आगे हम कोई भी उपसर्ग लगा देंगे, 20 प्रकार के उपसर्ग हैं। तो देखिए फिर से हार शब्द बनता है। अब आ लगा देंगे तो क्या बनेगा? आहार। वी लगा देंगे तो विहार। सम लगा देंगे तो संहार। परी लगा देंगे तो परिहार। तो आहार, विहार, संहार, परिहार। निर लगा देंगे तो कहां विहार, कहां आहार, कहां संहार और कहां परिहार। परिहार मतलब परित्याग। विषय, एक भगवत गीता में श्लोक है, विषयाः विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। तो वही क्रियापद का अर्थ परिवर्तित हो जाता है उपसर्ग लगाने से। तो यहां पे सर्ग कहा है पहला लक्षण जो है, तो फिर विसर्ग कहने की क्या आवश्यकता थी? तो विशेषेण सृष्टः, भगवान ने तो महत्तत्व आदियों के द्वारा, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सब के द्वारा सृजन का बीजारोपण कर दिया। तो जैसे मैंने कहा, आपने, आपको घर बनाना है, आपने कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया, अब मेरा काम है देखना कि वो कैसे सृजन हो रहा है। तो ये काम किसका है? ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी जैसे विस्तार करेंगे, उसको और सृजन करेंगे, इसको कहते हैं विसर्ग। विसर्ग शब्द को विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद पौरुषः कह रहे हैं। पुरुषेण कृतम पौरुषः, आपके द्वारा किया गया। जैसे कुंती का बेटा कौन्तेय, उसी प्रकार पुरुष सर्ग है और ब्रह्मा जी विसर्ग हैं। तो उनके द्वारा सृष्ट जो सृजन क्रिया है उसको आगे बढ़ाते कौन है? ब्रह्मा जी। ये हो गया सर्ग विसर्ग। अब आते हैं स्थानम। स्थानम माने स्थिति। तो वैकुंठ के स्वामी, वो उनका लोक है गोलोक, साकेत आदि भगवान के धाम है, द्वारका आदि, जगन्नाथपुरी आदि। तो अब हमें मान लीजिए एक डोर मैन की जरूरत है, घर के सामने एक द्वारपाल की आवश्यकता है, तो आप किसी को हायर करेंगे। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, जय विजय को उन्होंने स्वयं बनाया। ये भिन्नता है भगवान और जीव में। ब्रह्मा जी को बनाया, इंद्र आदि देवों को बनाया, अनेकों अवतार हुए भगवान के, विभिन्न नामश में और स्वामश में संवर्धन होता है। तो उनके कार्य को निरंतरता से आगे बढ़ाने के लिए अनेकों प्रकार से उन्होंने सृजन किया है। नारद आदि, सनातन, चार कुमार आदि, गोप, गोपी, ग्वाल, बाल। लेकिन सबकी मर्यादा है। मर्यादा अर्थ क्या है? ब्रह्मा, महेश आदि भगवान से ही उद्भूत हैं, है तो वस्तु तो भगवत तत्व। होते हुए भी भिन्न हैं, ये हमारी विशिष्टता है, अचिंत्य भेदाभेद। हैं वही लेकिन भिन्न हैं। इसीलिए जब हम सुबह पाठ करते हैं ना, दशविध नामापराध, नाम अपराध, द 10 ऑफेंसेस अनटू होली नेम, उसमें एक आता है श्लोक, श्री विष्णोर्य शिवः गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत सा खलु हरिनाम अहित कर। ये आता है ना, श्री विष्णुवर्य शिवादि गुण नामादि सकलम, नहीं नहीं, शिवश्च श्री विष्णुवर्य गुण नामादि सकलम, तो शिव ब्रह्मा इन सब को अलग करके देखना भगवान से, अलग नहीं है, अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी नाभि कमल से ही तो आए ना, अंभोजनी नाम है, तो नाभि कमल से उत्पत्ति हुई, तो भगवान के बिना तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति संभव नहीं होती। लेकिन ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य उनको सौंप दिया गया, अब उनमें यह अहंकार आ गया कि मैं तो सृजन करता हूं, तो उन्होंने ब्रह्म विमोहन लीला में क्या किया, ग्वाल बालों को अपहरण कर लिया। लेकिन वो ग्वाल बाल क्या है, भगवान के स्वामश हैं, भगवान के लादिनी संधिनी संबित, ये तीनों जो अंतरंगा शक्ति हैं उनके द्वारा सृजित है, वो माइक नहीं है। तो ब्रह्मा जी उनको नहीं चुरा सकते, तो ब्रह्मा पृथक हैं भी और पृथक नहीं भी हैं, यही अचिंत भेदाभेदवाद। तो इसीलिए देवी देवताओं का तिरस्कार करना मना है, लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए, अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए, भगवान के चरणों में ही समर्पित होना चाहिए। तो फिर इतने देवी देवताओं की सृजन किस लिए है, न ये सर्ग विसर्ग आदि, भगवान की लीला को पुष्ट करने के लिए। आपने पीछे अभी छठे मन्वंतर की कथा चल रही थी जिसमें समुद्र मंथन हुआ, वो एक मन्वंतर है जिसमें भगवान ने सबसे अधिक अवतार लिया है। कौन कौन से अवतार, अजित अवतार, कूर्म अवतार, धन्वंतरी अवतार और मोहिनी अवतार। तो पुरुषोत्तम महीने में मोहिनी जी ने आप लोगों को जो है अमृत का आस्वादन कराई है ना। तो चार अवतार लिए थे सिर्फ छठवें मन्वंतर में, अब ये सातवां मन्वंतर है वैवस्वत मन्वंतर। तो विभास्वन सूर्य के दो पत्नियां थीं, कौन कौन से, संध्या और छाया। संध्या से कौन कौन उत्पन्न हुए, संध्या से हाँ यमराज, यमुना, हाँ, और संध्या के साथ ही एक बार रमण विहार करने के लिए घोड़ा और घोड़ी का रूप लेके उन्होंने विहार किया, जिसमें संध्या का नाम वडवा बताया गया है श्रीमद् भागवतम में, वडवा, जिनसे अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई, वो वैद्य हैं। लेकिन ये वडवा वही संध्या ही हैं। और दूसरी जो पत्नी है छाया, छाया से कौन कौन उत्पन्न हुए, छाया से सावरणी, इसके बाद आठवें मन्वंतर, जैसे हमने एकादश श्लोक का पाठ किया ना, तो एकादश श्लोक में सावरणी शब्द का, अभी हम सातवें मन्वंतर तक की कथा सुन रहे हैं, इसके बाद जो मन्वंतर आएगा उसका नाम होगा सावरणी मन्वंतर। तो ये सावरणी भी सूर्य के ही पुत्र हैं, लेकिन छाया से उत्पत्ति हुई है। सावरणी, सनी और तपती एक कन्या हुई है, ये दूसरे पक्ष से उत्पन्न हुए हैं। अच्छा, तो सर्ग विसर्ग हम समझ चुके हैं, अब स्थानम, स्थान को भी मैंने समझा दिया। तो वैकुंठ आदि जो भगवान के अलग अलग स्थान हैं और स्थान में स्थित, अब वैकुंठ में देवलोक में अलग प्रकार के प्रजा होंगे, सुतल लोक में अलग प्रकार के प्रजा होंगे। प्रभुपाद ने कहा था ना, किसी ने पूछा था कि ओ वी वेंट टू द मून और मार्स, तो प्रभुपाद ने कहा यू कैनॉट गो विद दिस बॉडी। तो उस लोक के लिए उपयोगी शरीर चाहिए। आप यहीं से जैसे आकाश की ओर ऊपर बढ़ेंगे तो आपको ऑक्सीजन मास्क चाहिए ना, इसका मतलब क्या है, ये शरीर अनुकूल नहीं है वहां रहने के लिए। लेकिन पक्षी का शरीर अनुकूल बना हुआ है, वो 2 घंटा अगर वायुहीन अवस्था में भी रह लेगा तो भी वो जीवित रह सकता है। तो शरीर उसके अनुकूल होना चाहिए। तो दूसरे लोगों की तो कथा ही क्या है। तो ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक दिया, शिव जी को शिवलोक दिया, इंद्र को स्वर्ग दिया। अब इनके अलग अलग लोकों के अधिपति हैं ये, लेकिन इनकी एक सीमा परिसीमा है, उससे ऊर्ध्व वो जा नहीं सकते। ये क्या है, ये है उनकी स्थिति, यानी मर्यादा का पालन करना। तो सृष्टि भी भगवान ही करते हैं और उनको मर्यादा, मतलब हम ये कह सकते हैं जैसे आप वृंदावन में हैं तो वृंदावन में यह सामान्य नागरिक का कोई दायित्व होता है, आप ये कर सकते हैं, इससे बाहर आप करेंगे तो आप दोषी हैं। तो ये जो विधि विधान होता है ये भी भगवत प्रदत्त ही है, इसको स्थान कहा गया, इसी को स्थिति कहा गया है। ब्रह्मा जी भी उद्भूत हैं, ब्रह्मा जी ही सृष्टि कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को आप स्वतंत्र नहीं मान सकते, उनकी एक सीमा है। ये किसने निर्धारण किया, ये भगवान ने। तो ये हो गई स्थिति। पोषणम, अब पोषण आया, पोषण का अर्थ होता है नरिशमेंट। जैसे बच्चा मां की कृपा के बिना बड़ा नहीं हो सकता। तो ये जो पोषण है, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, अब ब्रह्मा जी को कहा सृष्टि करो तो सृष्टि नहीं कर पा रहे थे ना, तब आवाज आई आकाशवाणी हुई तपह तपह तपह। तो पर हजारों वर्षों तक उन्होंने तप किया, तब भगवान प्रसन्न होके उनको वेद का ज्ञान प्रदान किया, तब जाके वो सृष्टि में समर्थ हुए। तो ये लीला करने का तात्पर्य क्या है, ये लीला जब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, साक्षात भगवान के पुत्र हैं, तो भगवान नाभि कमल से जब उत्पत्ति हुई तभी उनको सारे शक्ति प्रदान कर देते, उनको ये करने की क्या जरूरत थी कि वो सृष्टि न कर पाए, फिर तपस्या के आदेश हो, तपस्या करने के पश्चात वो सृष्टि कर पाए। कहने का तात्पर्य भगवान ये दिखा रहे हैं कि मत्तः सर्वं प्रवर्तते मयाधक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मैं ही मुख्य हूं। एते चांश कला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये लीला कर रहे हैं। अब लीला के द्वारा इन 10 लक्षणों का पोषण होता है। कभी लीला करते हैं तो कभी स्तुति करते हैं, स्तुति, जैसे ध्रुव महाराज जी ने स्तुति किया, भगवान को देखा। अब सुनीति ने कभी ध्रुव महाराज जी को जो है कभी गुरुकुल आदि में नहीं भेजी थी तो उनको बोलना नहीं आता था, भगवान को जब देखें, देखने के बाद वो उत्कंठित हो गए कि मैं स्तुति करना चाहता हूं भगवान को, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे, 5 साल का बालक था। ये देख के पस्पर्श बालम कृपया कपोले, भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के गाल पे स्पर्श करवाया और वहां पे लिखा है प्रतिपादितम दैवीम गिराम, दैवी गिरा मतलब वाणी, दैवी गिरा मतलब देव वाणी, यानी संस्कृत भाषा को प्रतिपादित कर दिया ध्रुव महाराज जी में, तब उन्होंने वो श्लोक स्तुति किया, ध्रुव स्तुति। पहला श्लोक क्या है, यो अंत प्रविश्य मम वाच इमाम प्रसुप्ताम, मेरे अंदर प्रवेश करके मेरे अंदर, वो तो ध्रुव महाराज जी कह रहे हैं तो उनके भाव में तो था ही, लेकिन भाव को व्यक्त करने का नाम ही तो भाषा है ना, यया भाष्यते सा भाषा, जिसमें हमारे आभ्यंतरीन हृदय के अभ्यंतर में जो भाव है उसको व्यक्त करने का नाम ही भाषा है। तो यो अंत प्रविश्य मम वाच इमाम प्रसुप्ताम, जिन्होंने मेरे अंदर प्रवेश करके मेरी वाणी को प्रसुप्त किया। तो इस प्रकार की लीला करने का उद्देश्य यही है कि दिखाते हैं कि आप मेरे आश्रय में आओ, यहां तक कि शरीर भी आपको दिया है ध्रुव महाराज जी, शरीर भगवान से ही उत्पत्ति हुई, लेकिन वाणी जो बोलने की सामर्थ्य, बोलने का सामर्थ्य ये भी भगवान से ही प्राप्त होती है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, ईश्वरेर कृपालेश होय तो जहारे सही से ईश्वर तत्व वर्णिवारे पारे। तो ईश्वर की अनुकंपा से ही भगवत गुणाख्यान किया जा सकता है, उनके अनुकंपा के बिना संभव नहीं है। तो सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मन्वंतर। अब ये मन्वंतर क्या है, मन्वंतर का अर्थ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि मन्वंतर के द्वारा जो भगवान के भक्त हुए हैं उन मन्वंतर में, तो भक्तों की प्रतिष्ठा के द्वारा धर्म की प्रतिष्ठा करना, ये मुख्य उद्देश्य है मन्वंतर कथा करने की। तो इस मन्वंतर में अमुक मनु हुए, स्वयंभू मनु हुए, वैवस्वत हुए, सरोचिष हुए, उत्तम हुए, तमस हुए, ये मनु के नाम हैं। इंद्र कौन हुए, इंद्र के नाम जैसे यज्ञ नारायण प्रथम मन्वंतर में इंद्र बने। सप्तर्षि कौन हुए, तो ये प्रामाणिकता है। अब इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं वो प्रमाण हैं, और इसको पुष्टि कौन कर रहे हैं, भगवान स्वयं कर रहे हैं। तो ये लक्षण श्रीमद् भागवत महापुराण में है, ये जो 10 लक्षण हैं इसी से समन्वित है ये श्रीमद् भागवतम, यानी श्रीमद् भागवत में जो भी कहा गया है वो भगवत संबंधित हैं और भगवान सत्य हैं, तो ये सारे प्रमाण भी सत्य हैं। मन्वंतर के बाद ईशानु कथा, ये जो पांडव के बारे में चर्चा हुई, कुरुक्षेत्र युद्ध, इसकी क्या आवश्यकता थी, ध्रुव चरित्र, प्रह्लाद चरित्र, वृत्तासुर चरित्र, तो इन सब चरित्रों के द्वारा भगवान की जो उत्कर्षता है इसी को प्रतिपादित किया जाता है, भगवान की जो श्रेष्ठता है, यह ईशानु कथा, इसीलिए इसको ईशानु कथा कह रहे हैं, भगवान के भक्तों की कथा नहीं कह रहे हैं, ईशानु कथा। भले लीला कुछ भी हुई हो और उसमें कोई भी जुड़े हुए हो, लेकिन उपजीव्य विषय तो यही है कि भगवान की जो विशिष्टता है उसी को प्रतिपादित करना। तो ये हो गया ईशानु कथा। अब आता है निरोध। तो जब महाप्रलय होता है, प्राकृतिक प्रलय, तो सारे सृजन को, सृष्टि को भगवान अपने शरीर में लेके सो जाते हैं। तो निरोध का अर्थ होता है रोकना। तो भगवान पूरे सृजन को अपने शरीर में समाहित करके निरोध कर लेते हैं। यह है नवम लक्षण भागवत महापुराण के। दशम लक्षण क्या है, मुक्ति। तो मुमुक्षवः जो मुक्ति के अभिलाषी हैं वही भागवत का अध्ययन करते हैं। संसार दुख शरीर जनन मरण आदि से मुक्ति की प्राप्ति और अंतिम जो दशम लक्षण है वो है आश्रय। तो ये नौ लक्षणों को बताने का तात्पर्य यही है कि आप भगवान में आश्रय लें। नौ लक्षणों को बताने का यही अर्थ है कि भगवान में ही आश्रय ले। तो जन्मादि जन्म उन्हीं से होती है, सृष्टि आदि, उनकी स्थिरता पोषण उति आदि ये भगवान में ही स्थित रहते हैं और प्रलय भी भगवान में ही होती है। तो विषय थोड़ा कठिन था, है ना? इनमें मन्वंतर की कथा है तो सिद्धांत पर कथा है, लीला कथा इसमें ज्यादा चरित्र है नहीं, लेकिन तथापि श्रवण तो करना ही चाहिए, है ना? इसी से धीरे धीरे संस्कार उत्पन्न होते हैं और कृष्ण कथा अनुशीलन करते करते भगवत चरणों में रति होती है। तो इसीलिए सिद्धांत जानिते चित्ते नाकर आलस, जहा हई ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो जब थियोलॉजिकली आप किसी चीज को समझेंगे उनके प्रति जो आपकी दृढ़ता होगी ना, फिर आप कहीं भटक के कहीं और नहीं जा सकते। आप संप्रदाय को समझने के बाद कोई व्यक्ति इतर संप्रदाय में नहीं जा सकता फिर। तो इसको समझने के लिए अब भागवत क्या है, श्रीमद् भागवत एक अद्भुत पुराण है, न्याय शास्त्र बड़ा कठिन है, वेदांत शास्त्र अत्यंत नीरस है, व्याकरण शास्त्र नीरस है। तो मीमांसा न्याय दर्शन वैशेषिक इन सब का सरस व्याख्यान है यहाँ पे, जो वहां पे इतने क्लिष्टता से व्याख्यायित किया गया है उनको बड़े सरलता से यहाँ पे व्याख्यान किया है, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत बोध होना चाहिए। तो ठीक है, आप लोगों ने धैर्य पूर्वक क्लिष्ट कथा को श्रवण किया, इसीलिए मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। ठीक है, हरे कृष्णा।